अस्सलाम वालेकुम शौकत सर।
साहब जी, कैसे हैं आप? शदा साहब,
बहुत
खैरियत से?
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और सबसे तो पहले मैं यहीं से मेरे ख्याल में बात का आगाज़ करूं कि न्यूयॉर्क में जो सिल्वर अवार्ड जीतना है, सबसे पहले तो हमारे इदारे की तरफ से, ज़ाती तौर पे मेरी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये कामयाबी आपके लिए, लोरेलाई ऑलिव्स के लिए और पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत रखती है?
थैंक यू वेरी मच आपकी मुबारकबाद का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और हमारे जितने भी रीजनल एरियाज हैं। आपने जैसे पोटवार का जिक्र किया है, केपी है, जो हिली एरियाज हैं लाइक बलूचिस्तान, फिर लोरालाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे पास जो जो ऑलिव में काम है पिछले कई दिहाइयों से हो रहा है, पर वो बड़े खामोश तरीके से हो रहा था एंड लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं आ रही थी इंटरनेशनली बिकॉज ऑलिव की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादातर वेस्ट में है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ा चेंज इंशाल्लाह ऐसा ऐसा यहाँ पे जो पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो लोग यहाँ भी थोड़ा वो हेजिटेट होते थे कि पाकिस्तानी ऑलिव का पता नहीं किस तरह है बिकॉज इट इज नॉट इंटरनेशनली रिकग्नाइज। तो अब इसके बाद जो है पाकिस्तान के जो लोकल जो लोग हैं, जो आम फार्मर यहाँ पे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा वो हो गया है कि लोगों को अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि पाकिस्तान का ऑलिव ऑयल जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी
स्टैंडर्ड क्या है?
का है। तो ये इट्स ए ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर एवरीवन।
सो शौकत साहब, हर कामयाबी के पीछे यकीनी तौर पे एक पस मंजर और एक जद्दोजहद की कहानी होती है। ज़रा हमें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुए, बचपन कैसा गुजरा, तालीम कहाँ से हासिल की और कौन से अवामिल थे जिन्होंने आपको इस सफ़र की जाने मोड़ दिया जो आज एक कामयाब कारोबारी शख्सियत और अवार्ड याफ्ता इदारे के सरबराह की हैसियत से हमारे सामने आई है?
जी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ रेमिया खान से,
ओ अच्छा,
रिसर्च
माशाल्लाह।
वहाँ की है। फिर मैंने जो आगे कॉलेज और बाकी जो मेरा है कराची से किया है। मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है और वहीं पे ही मैंने स्टार्ट किया। फिर कराची से मूव बैक टू इस्लामाबाद और वहाँ पे हमने छोटा सा एक ऑफिस था, हमारे वहाँ पे एक और दोस्त है उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। और उधर से जो है एग्रीकल्चर का मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर है, जैसे मैंने बताया रेमिया खान है। तो मुझे थोड़ा सा और इसको मतलब जिस तरह हम लोग कर रहे थे कन्वेंशनली और चीज़ें, उसमें 2-3 साल के बाद हमें लगा कि यार इसको हमें थोड़ा डिफरेंटली करना चाहिए, ये इस तरह कन्वेंशनल तरीके से जो है ना हम इसको नहीं कर सकते। तो 2021 में हमने एक टेक कंपनी बनाई विथ उसमें जो टेक प्लेटफॉर्म है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि फार्मर्स के लिए भी अक्रॉस पाकिस्तान के वो लोग इसको जो है वो यूज़ करके यील्ड बढ़ा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंसाइट ले सकते हैं, AI को यूज़ करके अपना इंस्टेंट सॉल्यूशंस वहाँ से मांग सकते हैं, इनपुट्स अच्छे कैसे मिलते हैं और वो उनको अपना वो कर सकते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, हमारे रिमोट एरियाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि फार्मर्स को ये नहीं पता कि मुझे अगर इनपुट चाहिए, उस पर चॉइसेस नहीं होती, उसके पास जो एक शॉप वाला वहाँ अवेलेबल होता है उनके मौजाजात में, विलेज में, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमने उनको लिबर्टी दे दी कि बाईटेक के आप जो है वो मोर देन 200 वेंडर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये ऑलिव का जो है ये, क्योंकि वी आर वेरी मच इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, तो इसमें भी मुझे हमारे पास एक और इनिशिएटिव था जिसमें हमने मार्केट स्टडी की ऑलिव की, और ऑलिव की हमारे पास फार्मिंग भी है। तो जब मैंने ये देखा कि यार ऑलिव का जो है पाकिस्तानी, हम लोग जब इसका एक्सट्रैक्ट करवा के 2022 की बात है, जब हम किसी को देते थे, इवन इफ वी हम कम्प्लीमेंट के तौर पे भी दे रहे थे तो लोग ले रहे थे, बट दे आर हेजिटेट टू यूज, यू नो। तो
उसकी क्या
वो
वजह थी?
सबसे
वो
बड़ा
हेजिटेशन की
प्रॉब्लम
वजह क्या थी कि उनको लगता था ये शायद इसकी
बिकॉज
क्वालिटी?
वो पाकिस्तान जो है वो इट्स नॉट द ऑलिव कंट्री। उनको ये था कि यार ऑलिव तो बस स्पेन और इटली
सही।
है या तुनिजिया है, इस तरह की कंट्री, मेडिटेरियन कंट्रीज का ही है, यहाँ की क्रॉप है नहीं, तो इट इज अनलाइकली कि यहाँ से वो क्वालिटी
वो
है वो
क्वालिटी
परफेक्ट
सही।
वो प्रोड्यूस हो सके। तो उसका यही था कि फिर मैंने ये सोचा कि यार ये क्योंकि आई ट्राइड इन 2023 एज वेल, उस वक्त भी मैंने एक ट्राई की. आई गॉट द सैंपल्स जो हमने ऑयल निकलवाया, उसको हम लेके गए यूसी डेविस में. और उस वक्त लोगों ने इसको यूसी डेविस कैलिफोर्निया की बात करा, उन्होंने उसको दे लाइक इट, बट दे आल्सो यू नो उसमें थोड़े से वो थे शिकी थे कि वो है. तो फिर मुझे जब मैंने ये पूरे इटली में स्पेन में देखा, मैंने कहा ये सबसे जो इट्स है ना, हमें अब उधर जाना है, वी हैव टू गो देयर. हमने उसमें 2 साल में हमने लर्न किया क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, हाउ दे वांट टू यू नो रिसीव द सैंपल्स, और बाकी सारी चीजें कैसे करते हैं, किस तरह एक्सट्रैक्शन होती है, ये सारी. क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टीम, हमारे पास टीम है जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर वगैरह, हमने उनको बताया ये रिजल्ट लेने हैं, ये इनका एसिडिटी लेवल होना चाहिए, ये
सुशोक साहब,
सैंपल
इसमें मैं
सॉफ्ट होने
आपको
चाहिए, यू नो.
थोड़ा इंटरप्ट करके, जो लोरालाई है ये, मतलब ऑब्वियसली लोरालाई में भी इसकी ऑलिव्स की प्रोडक्शन है, और बलूचिस्तान का एक रेफरेंस बहुत सारे हवालों से जो पॉजिटिव होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से उसके उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं वो इतनी शायद मुस्बत नहीं होती. सो लोरालाई का ब्रांड दुनिया में जाना, लोरालाई नाम रखने की क्या वजह थी, ये मैं पूछना चाहूँगा. और इसका
अच्छा,
21 हाँ
ये हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं जब लोरालई में 2021 में गया मैं, और सारा मैं वहाँ पे जब उधर मैंने देखा ना, तो वो एक तो इन्वायरमेंट मुझे पसंद आई, दूसरा बलूचिस्तान भी एक वो हमारे एज पाकिस्तानी हम सबके हार्ट में बहुत ज़्यादा करीब है. हम चाहते हैं कि उनके साथ हम लोग और काम करें, वो उस इसको हम ऊपर लेके आए. तो उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि आई डू दैट थिंग, कि हम मैं इसको ऐसा नाम दूंगा कि ये जो है. और दूसरा, मेरी जो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हैं, मोस्टली वो रीजनल स्पेसिफिक होती हैं, रीजन्स जो है ना वो करती, जैसे आप इटली में आप देखें पुलिया और लेते हैं टस्कनी, यू नो इस तरह के. तो रीजनल एक सेंस ऑफ आपका वो आप उसको उसके साथ रेजोनेट करते हो. तो वो एरिया, वहाँ के लोग और उसका जो इन्वायरमेंट है, वो मुझे बड़ा अपील किया. तो उस वक्त ही मैंने सोचा कि आई पुट दैट नेम टू माय पेरेंट, कि हम लोग इसको जो है ना इसी नाम से ही लेके जाएंगे, इंस्टेड के हम एक्स वाई जेड करें. तो अलहमदिल्ला, और उसका मेरे ख्याल ने इम्पेक्ट ये आया है कि अगरचे कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में बहुत से फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि ऑलिव से रिलेटेड है, बट ये दिस नेम हैज बिंग समथिंग न्यू एनर्जी इन इट, कि वो अब पूरा ना नॉट ओनली वो एरिया वो इससे उठ चुका है, बल्कि अब वो पाकिस्तान की भी एक पहचान बन गया है.
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. और मैंने कहीं पढ़ा था आपका एक कोई कॉन्वर्सेशन थी जिसमें आपने कहा कि अगर पाकिस्तान अगले 5 वर्षों में तकरीबन को अराउंड 10 मिलियन ट्रीज लगाए ऑलिव्स के, तो हम तकरीबन कुछ $2 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो कर सकते हैं. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या हुकूमत और जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है? मुझे तो ये लगता है कि जैसे हम कैनेडा में हम जो एग्रीकल्चर है हमारी, जो हमारी प्रोड्यूस है उसमें हमारी कैनोला एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, उसमें हमारी वीट है, उसके अलावा हमारे लेंटल्स हैं, चिक पीज हैं, और फिर हमारी जो ये रीजन जो जहाँ पे हम बैठे हैं इसमें आपकी जो स्पेशलिटी क्रॉप्स हैं, चेरीज है, ब्लूबेरीज है, ये बहुत कुछ है. और यहाँ पे आप देखेंगे इतने मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स जो हैं कैनोला के हैं, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने कैनोला की काउंसिल बनाई हुई है, कैनोला काउंसिल ऑफ कैनेडा के, जिसमें रिसर्च है और बहुत फंडिंग है. तो आप क्या समझते हैं ये जो विजन है आपका कि $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हासिल हो सकती है, तो ये कितना रेडी है हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर?
देखिए, हम लोग ऑलरेडी, आपको भी पता होगा कि हम मोस्टली $7 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑयल का. अच्छा,
जी
अभी लास्ट ईयर हमने जो सेसमी है, सेसमी की मोर देन आई थिंक 200+ मिलियन की हमने एक्सपोर्ट की सीड. तो सेसमी सीड जो है वो इसी एक्सपोर्ट हो गया, बिकॉज ये इसको किसी और काम में नहीं, दे यूज एवेल्यूएट करते हैं थोड़ा सा, और उसमें ऑयल करके हमें भी बेचते हैं और पूरी दुनिया में भी बेचते हैं, ठीक है. तो वो जो 200 मिलियन का हमने सीड बेचा है, वो 1 बिलियन का ट्रांसलेट होके वापस आ जाता है. सही. तो जो ऑलिव है, इसमें हमारे पास बहुत बैरन लैंड पड़ी है, ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि हम किसी क्रॉप के साथ इसको कंपेयर करें, ठीक है, और कोई और आके किसी और क्रॉप फार्मर्स के पास चॉइसेस होती हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइफ साइकिल. उस लाइफ साइकिल को चेंज किए बगैर ये एक नई जो है वो क्रॉप हम लोग खड़ी कर सकते हैं. जहां तक $2 बिलियन का है, ये जो टोटल ट्रेड है इट इज अराउंड $15 बिलियन की अभी है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये अभी बढ़ती जाएगी. उसकी रीजन ये है कि जो स्पेन एंड इटली में जूट की
प्रोडक्शन
प्रोडक्शन
कम हुई है मेरे ख्याल में उनकी।
कम हो रही है, ठीक है, और वो अच्छा मजे की बात यह है कि दे आर द इम्पोर्टर, बिगेस्ट इम्पोर्टर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर. ठीक
वेरी इंटरेस्टिंग।
है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्ट भी वो करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी वो करते हैं. इट्स मीन के वो क्या करते हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू लूज देयर बिजनेस. वो जैसे ट्यूनिजिया है, मोरक्को है, इस तरह की कंट्रीज से वो सारा ऑयल वो चीप उठा लेते हैं, एंड देन बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट वो सारा वहाँ पे बाकी जगहों पे वो फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं. हमारे पास ये है कि हमारा जो एरिया अवेलेबल है इट इज एक्यूमुलेटली इन दोनों कंट्रीज से जो वहाँ पे ऑयल ऑलिव लगा हुआ है इनसे ज्यादा है. ठीक
सही
है,
है।
तो हम ये 20 या 25% ऑफ $15 बिलियन लेना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, कि हम अगर इसको इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग इसको जारी रखें, वी शुड कंटिन्यू द जो प्लांटेशन है उसको अगर हम लोग ले जाएं. अभी ये लोग लगा रहे हैं 6 लाख टू 1 मिलियन प्लांटेशन पर ईयर. ठीक है, अगर ये इसको 2 मिलियन 3 मिलियन पर ईयर कर लेते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है कि हम इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं $2 बिलियन का.
जी, और शौकत साहब उसमें मतलब कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि आपने बताया कि अगर थोड़ा एरिया फोकस किया जाए, हमारे पास जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, बारानी एग्रीकल्चर है, वो आपकी पूरी पोटवार की बेल्ट है, हमारा जरा गाजी खान और बख्खर खुशाब वो एक बेल्ट है, फिर आपका रहीमयार खान और भावलपुर भावल नगर की एक जो वो एक बेल्ट है, चोलिस्तान की एक बेल्ट है, हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं। और इसको अगर एक एक हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का अगला स्टेप है उसकी एक्सट्रैक्शन। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ 3 एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं, और इस पे आपकी क्या तजवीज़ है कि इसको इसको एक स्टेप है उसकी प्रोडक्शन का, उसके बाद आगे उसकी प्रोसेसिंग का है, इस पे कुछ
नहीं,
कमेंट
तीन
कीजिएगा।
तीन यस तीन एक्सेप्शन प्लांट इनके, सिर्फ दो गवर्नमेंट के और एक प्राइवेट, ये लोरालेई में लगे हुए हैं. ठीक है, अभी तो इन्होंने ऑलमोस्ट 40 प्लांट्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने. आई थिंक ये जो हमारा इनका जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये वन ऑफ इट्स काइंड इन होल वर्ल्ड, के इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं. और इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का एक वाहिद प्रोजेक्ट होगा जिसमें इन्होंने फ्रॉम लाइक फार्मर टू एक्सट्रैक्शन द थिंग एंड यू नो मेकिंग इट एक फार्मर्स के लिए पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया है. और ये 40 बना चुके हैं, और अभी ये क्या कर रहे हैं कि अभी ये लोग और लोगों को भी दे रहे हैं कि आप दे आर मेकिंग स्मॉल यूनिट्स, और वो लोगों को दे रहे हैं. लाइक अगर कोई छोटा सा बड़ा जिम्मेदार है उसको दे रहे हैं कि यार आप 50% हमसे लो और ये आप मशीन ले जाओ. और बिकॉज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो कि हमने अभी सिल्वर लिया है, जो मुझे लगता है कि हम गोल्ड ले सकते थे, वो मुझे लगता है जो एक चीज हमने मिस की है वो था इसका एक्सट्रैक्शन टाइम. हमने एक्सट्रैक्शन टाइम, मैंने जो इसमें पहले स्टडी किया था, आई थॉट के उसमें मेजोरिटी था कि 20 घंटे 18 घंटे के अंदर अंदर आप इसको कर लें. तो हमने इसको टारगेट रखा था कि वी विल बी विद इन 10 आवर्स. अब जो इसकी जो बेस्ट जो और हमें मजीद पता चला है कि वो हम टाइम, इफ वी कैन रिड्यूस दैट टाइम विद इन 5 आवर्स, तो इसकी क्वालिटी और भी बहुत बढ़ जाएगी, और भी वी कैन प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल. तो ये लोग जो मशीनें दे रहे हैं कि ऑन फार्म आप बजाय इसके के कहीं मिल में लेके जाए, विच इज आपसे कोई आधा घंटा ड्राइव है या 1 घंटे की ड्राइव है, आपको क्यू में लगना पड़ता है, यू नो आपका 8-10 घंटे वैसे लग जाते हैं, आप फूड को एक्सट्रैक्ट किए हुए वो आपके बास्केट में पड़ा हुआ है, तो वो उसके बजाय फार्मर के उसके घर के ऊपर ही ये हो जाएगा विद इन 3-4 आवर्स. इट कैन बी द बेस्ट ऑलिव ऑयल के जितनी जितनी जल्दी इसको आप एक्सट्रैक्ट करके अपना पैक कर ले वो सबसे होता है.
और
ये लोग बड़ा अच्छा इस पे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें जो एक्सट्रैक्शन यूनिट्स और ये ज्योग्राफिकली बड़े अच्छे बना रहे हैं. अच्छा, एक और आपने जो बात की है कि जो एरियाज हैं, मैं आपको एक बात बताऊं,
जी
वो कि इंडिया में जो इसराइल के साथ मिलके ये लोग राजस्थान में, राजस्थान आप देखो कि उसमें क्या टेम्परेचर होता है, मतलब हमारा इसी तरह चोलिस्तान है हमारा या थर है, वो उस तरह की टेरेन में वो लोग ऑलिव की प्लांटेशन कर रहे हैं। एंड दे हैव इन 2014 आई थिंक जो इन्होंने वहां पे वो मिल भी इंस्टॉल किया हुआ है फॉर देयर एक्सट्रैक्शन, और उनका कोई प्लान भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के टेरेन पे अगर ऑल होता है, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो डेरा गाजी खान बहुत जबरदस्त वहां का क्लाइमेट है। इसी तरह सिंध का जो आपका बलूचिस्तान और सिंध का जो एरिया जो मिलते हैं एरिया बॉर्डरिंग एरिया जैसे गोरख है, और ये सारे एरिया ये आइडियल हैं फॉर प्लांटिंग ऑफ ऑलिव। जो मैं ये कहना चाहता था, मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास इतनी लैंड है जो बैरन लैंड है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए इस वक्त क्या है, वाटर। वाटर के ऊपर हम लड़ रहे हैं
और इसकी
अभी,
रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ऑलिव
बहुत कम है।
बहुत कम है, और इसकी वैसे भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी कम है, इसका पेस्ट प्रेशर बहुत बाकी क्रॉप से कम है, इसकी अडॉप्टेबिलिटी इस क्रॉप की वो बहुत ज्यादा है क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस के साथ।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक सवाल इस पे मैं करना चाहूँगा, जिस अब मेंबर है पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का, इस मेंबरशिप के बाद भी मतलब कुछ लगता है आपको पाकिस्तान को कुछ आलमी सहूलतें, तरबियत या कोई
अच्छा,
टेक्निकल सपोर्ट मिलने की तवक्को?
इसमें जो है ना, ये दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेंबरशिप। आप भी हैव बीन डेटा द अपर कंट्री व्हिच इज द ऑलमोस्ट आपका जो है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी द मेंबरशिप। आई थिंक दे विल बी गेटिंग इन मंथ ऑफ टू, वो मेंबर ऑब्जर्वर इनको मिला हुआ है, मेंबरशिप इनको मिल जाएगी। मेंबरशिप के बाद जो है IOC जैसे आपने कहा 98% इसको रेगुलेट करता है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ दे नॉट ऑफ डॉक्टर्स जो कि PhDs हैं, जिनको ट्रेनिंग है, सेंसरी जो पैनलिस्ट हैं वो है। आईओसी अपने बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम चलाती है, तो वो उससे बहुत बड़ा इम्पेक्ट आएगा पाकिस्तान की जो हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टू उसको इंश्योर करना कि जो क्वालिटी ऑयल हमारा वो कंसिस्टेंट हम लोग इस गेम में रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, IOC का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर मेंबर कंट्रीज।
जी, और जो लोरेलाई ऑलिव्स है उसके लिए आपने क्या सर्टेन टारगेट्स जो है वो रखे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? इसमें और क्या जिद्दत क्या लेके आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप इसमें क्या देख रहे हैं? और मेड इन पाकिस्तान, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑलिव की मार्केट में जैसा कि आपने कहा कि लोगों को एक थोड़ा सा कॉन्शियस दे, आप उनको सैंपल भी अगर भिजवा रहे हैं वो उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान का कहीं रेफरेंस नहीं आता कि ऑलिव्स प्रोडक्शन है। सो जो मेड इन पाकिस्तान और लोरेलाई ऑलिव्स, क्या क्या समझते हैं कि अगले कुछ अरसे तक हम कहाँ पे एक बहुत भरोसामंद एक एक ब्रांड बन सकेंगे, मेड इन पाकिस्तान और लोरेलाई ऑलिव्स?
इंशाल्लाह मेरा जो अपना फोकस है ना, बिकॉज आई विल बी कीपिंग दैट ब्रांड फॉर द ओनली क्वालिटी ऑलिव ऑयल, दैट्स इट, देयर विल बी नथिंग मोर। बिकॉज ऑलिव में आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है आपका, मतलब आप यू कैन गो फॉर पिकल, बहुत बहुत चीजें। बट आई हैव टू, मैंने टारगेट रखा हुआ है कि हमने अपने आप को फोकस करना है फॉर द क्वालिटी ऑलिव ऑयल फर्स्ट। सेकेंडली ये है कि हम लोग जो है वो 10x पे अल्हम्दुलिल्लाह भी इस जो नेक्स्ट जो क्रॉपिंग सेशन आ रहा है हमारा इसमें अक्टूबर नवंबर में, हम लोग नेक्स्ट ग्रोथ पे जा रहे हैं। उसका हमारे पास अभी जो हमारे अपने टारगेट्स हैं पाकिस्तान से पूरे और नॉर्थ दुनिया से जो है ना, वो डिफरेंट जगहों से हमारा डिमांड आ रही है, तो वी आर ट्राइंग टू पुट आवर प्लेस ओवर देयर, जहाँ पे हमारा जो लोग जहाँ पे समझते हैं, लाइक वी आर नॉट गोइंग एवरीवेयर, हम लोग सिर्फ जहाँ ऑर्गेनिक्स है, जहाँ हेल्थ है, हम सिर्फ वहाँ अपना फोकस रख के उधर जा रहे हैं। रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में अभी हमारा फर्स्ट टारगेट है टू कैटर द पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनको हमने पिंक लेके आना है सो दैट दे कैन रिड्यूस देयर जो वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, यूज करें और इस पे ट्रस्ट लेके आए। ताकि ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट इससे 20 मिलियन डॉलर का वो है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये इसको हम पहले वो सब्स्टिट्यूट करें, देन वी गो फॉर एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह।
वेरी इंटरेस्टिंग।
यस, इन्वेस्टमेंट्स का ये है कि वी आर ओपन फॉर वी आर अभी लोग आ भी रहे हैं, बट वी विल इंशाल्लाह ओपन एंड वी विल लुक इफ कोई अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगी एंड वी विल बी यू नो इन लुकिंग फॉर द पार्टनर्स हु कैन यू नो स्केल दैट बैंड, बिकॉज का हमारा कॉस्ट सबका एक ही है कि पाकिस्तान, एंड दिस इज द समथिंग कि हम अच्छा इसमें हमारे पास स्पेस भी है कि जिस तरह का हमारा फेवरेबल एक इकोसिस्टम यहाँ पे बिल्ड हो रहा है और हमें ज़रूरत है, और हम एक एक अपनी स्पेस बहुत जल्दी जो है इसको हम इसको हम वो कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं।
शौकत साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में एक सवाल, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऑलिव्स तो उसका एक सेगमेंट है जिस पे आपने फोकस किया है, इसके अलावा भी आप यकीनी तौर पे इसको ब्रॉड जो एक व्यू के साथ देख रहे होंगे। हमारे मुजफ्फरगढ़ के आम के बागात हैं, KLP रोड पे जाए आप, आपको बाग नज़र आते हैं आमों के। सिंध है, हमारी डेट्स है, बलोचिस्तान की डेट्स है और सिंध की डेट्स है, सिट्रस है हमारे पास। क्या आखिर में एक पैगाम देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उसको कैसे फोकस कर सकते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनको वो एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए, क्या उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे एज ए होल पाकिस्तान के लिए, नौजवानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर फ्यूचर कैसे देखते हैं पाकिस्तान में?
बिल्कुल, देखिए अभी जब से ये टेक्नोलॉजी का एक बूम चल रहा है तो दुनिया बहुत सुकड़ गई है। अब लोग आपको इफ यू आर वर्किंग इन अ रूम, लोग आपको जज कर रहे होते हैं विद योर वर्क, ठीक है। एज अ पाकिस्तानी हमारा एक बहुत बड़ा हेरिटेज है, हमारा एक बहुत बड़ा बेस है कि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है, 80% हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है एग्रीकल्चर में। तो पाकिस्तान में जो हम लोग 1950s में वी वर द यू नो एक्सपोर्ट में थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब हम लोग इम्पोर्ट में आ गए हैं, मेजोरिटी हमारा फूड जो है वो इम्पोर्ट हो रहा होता है। उसकी रीजन ये है कि जो आपने न्यू जनरेशन का वो दिया है, ये जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है ना ये बड़ा कंसिस्टेंट, ठीक है। आपका ये है कि बाकी सेक्टर्स आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट सेक्टर है वेरी कंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग हमारे जो लोग हैं, इंस्टेड ऑफ दे डू अदर थिंग दे शुड गो फॉर द R&D, और इधर जाए हमारे डॉक्टर्स बने डिफरेंट, उसमें जाए मैंगो है हमारा, ऑरेंज है, ठीक है, और बाकी जैसे मैंने कहा कि सेसमी है, सेसमी अगर इम्पोर्ट सारा हमसे निकल के एक्सपोर्ट हो गया है तो वो किधर गया है, वो वहां उन्होंने उसको थोड़ा सा R&D के उसमें वैल्यूएशन किया एंड देन दे एक्सपोर्ट विद द देयर नेम, यू नो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द पिंक सॉल्ट। हमें मतलब हमारा इतना बड़ा वो है, राइस के साथ भी यही हो रहा है। अब राइस आप कनाडा में है, बाकी जगहों पे देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि किसी और कंट्रीज की हैं, बट पाकिस्तानी राइस को वो बेच
अपने
रहे
ब्रांड
हैं
के साथ भेज, अपने मेड, हाँ
अपने,
मेड इन पाकिस्तान है हमारा चावल, लेकिन वो
बट
मेड इन
लेकिन
पाकिस्तान
हाँ,
नहीं है। सही,
तो ये यंग जनरेशन का ये है कि जो सबसे अट्रैक्टिंग इसमें एग्रीकल्चर में है कि फूड कभी भी आप फूड कुछ भी कर लें, आप फूड का जो डिमांड है वो आप रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसका ये एक बड़ा जबरदस्त सेक्टर है, यंग लोगों को आना चाहिए इसको टेक ओवर करें, ताकि हमारी जो पिछले वाली जो दो जनरेशन थी दे है यू नो उन्होंने काफी वो किया है। हम लोग वीट में टॉप 10 में है, राइस में टॉप 10 में है, हम लोग मतलब जो वो इस तरह के वी आर ऑलरेडी ऑन द टॉप, ठीक है, इन प्रोडक्शन। बस थोड़ा सा ये है कि वो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी है, लोगों को भी चाहिए, और ये टारगेट सेट करें एंड फोकस होके करें कि हमने इधर जाना है और वी हैव टू गो और यू नो सेल करना है कि बाकी। अब एक मैं कैलिफोर्निया का एक ब्रांड है, वो लोग एक ब्लैक किस्म का राइस बेचते हैं, ठीक है, और वो एक काउंटी है उसमें कोई राइस है विच इज आई थिंक लो कार्ब उसका, मतलब वो उसमें कोई कुछ नहीं है, बट बिकॉज प्रेजेंटेड देयर लोकल प्रोड्यूस इन अ वे दैट बाकी लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत बड़ी चीज है. यू नो हमारे यहाँ इतने आपने जिक्र किया इन एरियाज में इतनी इतना ट्रेजर पड़ा हुआ है जिसको हम टैप कर सकते हैं और वो टैप करेगी हमारी यंग जनरेशन जो कि 20 और 40 के बीच में है. दे शुड डू फॉर दैट. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एग्रीकल्चर और फूड को के अपने सेक्टर के हिसाब से बात करूंगा इसमें बहुत बड़ा हुआ है.
स्कोप है, बहुत स्कोप है,
यंग जनरेशन उसको. हाँ
बहुत स्कोप है. बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपका जज्बा विजन मेहनत वाकई काबिल तकलीद है. और हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान के जो ऑलिव रेवोल्यूशन है वो दुनिया भर में अपना नाम एस्टेब्लिश करे, अपनी खुशबू और जायका बखेरे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
खुदा हाफिज़.